ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஓம் ஷன்னோ மித்ர ஷம் வருண ஷன்னோ பவத்வர்யம ஷன்ன இந்திரோ ப்ரஹஸ்பதி ஷன்னோ விஷ்ணுருருக்ரம நமோ ப்ரஹ்மணே நமஸ்தே வாயோ த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம வதிஷ்யாமி ரிதம் வதிஷ்யாமி சத்யம் வதிஷ்யாமி தன்மாமவது தத்வக்தாரமவது அவது மாம் அவது வக்தாரம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் சஹனாபவது சஹனௌ புனக்து சஹவீர்யம் கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் யஸ்சந்தஸாம் ரிஷபோ விஸ்வரூபஹ சந்தோப்யோத்யமிருதாத் சம்பபூவ சமேந்த்ரோ மேதயாஸ்ப்ரிணோது அம்ருதஸ்ய தேவதாரணோ பூயாஸம். ஷரீரம் மே விசர்ஷணம் ஜிஹ்வா மே மதுமத்தம கர்ணாப்யாம் பூரி விஸ்ருவம் ப்ரஹ்மணஃ கோஷோஸ்தி மேதயா பிஹித ஸ்ருதம் மே கோபாய. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் அஹம் ரிஷஸ்ய ரேரிவா கீர்த்தி ப்ரிஷ்டம் கிரேரிவ ஊர்த்வ பவித்ரோ வாஜினிவ ஸ்வம்ருதமஸ்மி த்ரவிணம் சவர்ச்சசம் சுமேதா அம்ருதோக்ஷித. இதி த்ரிசங்கோர் வேதானுவசனம். ஓம் சாந்தி அந்தி. ஓம் பூர்ணமதஹ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஆப்யாயந்து மமாங்கானி வாக் ப்ராணஶ்சக்ஷுஃ ஸ்ரோத்ரமதோ பலமிந்த்ரியாணி ச ஸர்வாணி ஸர்வம் ப்ரஹ்மோபநிஷதம் மாஹம் ப்ரஹ்ம நிராகுர்யாம் மாம ப்ரஹ்ம நிராகரோத நிராகரணமஸ்த்வ நிராகரணம் மேயஸ்து. தத்மனி நிரதேய உபநிஷஸ்ரு தர்மாஸ் தே மயி சந்து தே மயி சந்து. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் வாங் மே மனசி பிரதிஷ்டிதா மனோ மே வாசி பிரதிஷ்டிதம் ஆவிராவீர்ம ஏதி வேதஸ்ய ம ஆனிஷ்ட ஸ்ருதம் மே மா ப்ரஹாசி ரனேனா தீதே நாஹோராத்ராந்த சந்ததாம்ய ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम भद्रन्नो अपिवातयमन ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभ्य श्रृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमा क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलय करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। अभी इस स्वाध्याय प्रवचन कार्य के अंतर्गत अपूर्व यह ज्ञान यज्ञ प्रस्थान त्रय ज्ञान यज्ञ जिनमें तीनों प्रस्थान का प्रवचन स्वाध्याय तीनों प्रस्थान में से प्रस्थान शब्द का अर्थ मार्ग प्रस्थियते अनेन इति प्रस्थानम जिसे जाते हैं परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का साधन है ज्ञान और ज्ञान प्राप्त होता है वेदांत प्रमाण से। शास्त्र ही वेद ही प्रमाण तो वेद प्रमाण से प्राप्त परमात्मा के लिए मार्ग वेद के द्वारा प्राप्त करते हैं, वेद के अनुसार स्मृति भी है, और वेदांत सिद्धांत दर्शन छह दर्शन में से उत्तर मीमांसा दर्शन व्यास जी के द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र तीनों प्रस्थान में से पहले स्मृति प्रस्थान श्रीमद भगवत गीता जो पूर्व वर्ष हो गया था, अभी इस बार उपनिषद ज्ञान यज्ञ श्रुति प्रस्थान। ये श्रुति श्रुति तो मूल प्रमाण है और स्मृति श्रुति के अनुकूल होने से प्रमाण है। श्रुति से विरुद्ध हो कोई भी स्मृति त्याज्य है। भगवान भाष्यकार ने सारे स्मृतियों में से एक महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व में श्रीमद भगवत गीता जो अत्यंत प्रसिद्ध उसका वही ग्रहण किया जिसके ऊपर भाष्य रचना की। सारे संप्रदाय में श्रीमद भगवत गीता का भाष्य स्मृति प्रस्थान रूप से ग्राह्य है। स्मृति प्रस्थान में उपनिषद है वेदांत। वेद में 1,00,000 मंत्र कहते हैं, शाखा है 1,180। एक उपनिषद है मुक्ति का उपनिषद जिसमें भगवान रामचंद्र हनुमान को कहते हैं ऋग्वेदादि विभागेन वेदा चत्वार ईरिता तेषां शाखा अनेका स्युरे तासु उपनिषदस्तथा ऋग यजु साम वेद चार वेद है। शाखा अनेक है और प्रत्येक में उपनिषद भी अनेक है। आगे किस वेद में कितने शाखा कहते ऋग्वेद से तो शाखा स्युरेक विंशति संख्यका नवाधिक शतम शाखा यजुसो मारुतात्मज। ऋग्वेद की शाखा 21 है, एक विंशति 109 शाखा है यजुर्वेद में, मिलकर कितने होगा 130। 21 है और 131 हुआ। सहस्र संख्या जाता शाखा सामना परंतप अथर्वण से शाखा स्यु 50 वेद तो हरे। साम वेद में एक अकेले 1,000 शाखा है और अथर्ववेद में 50 है। 130 हो गए थे ये 50, 180 और 1,000 सामवेद 1,180 शाखा। अब प्रत्येक शाखा में उपनिषद मता एक शाखा में एक उपनिषद। उपनिषद ज्ञान कांड वेदांत कहा जाता है। वेद के अंत सार है, अंत में आता है और सार भी है ज्ञान। उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। उप नि दो उपसर्ग है, आगे के धातु है सद सदली, विसरण गति अवसादन तीन अर्थ है। विसरण का अर्थ शिथिल करना, गतिगमन प्राप्त करना, अवसादन का अर्थ नाश। तीन अर्थ इसमें है। सूत्र है सत्सुदिश द्रुह दुह युज विद विद छिद जी नी राजा उपसर्गे पी कुई पी। उप निपूर्वक सद धातु से कोई भी प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द बनता है। इसको बनाने के लिए पाणिनि महर्षि ने सूत्र रचना की। तो उप निपूर्वक सद धातु ब्रह्म विद्या इसका अर्थ है। इसके उपनिषद के श्रवण से साधक के अविद्या ग्रंथि शिथिल होती है। ग्रंथि क्या है तादात्म्य अध्यास आगे प्रसंग वशत बताएंगे। ग्रंथि है इतने गांठ, अनात्मा आत्मा भिन्न है ये सबको मालूम है, जड़ है देह, मैं देह नहीं सबको मालूम है, फिर भी देह में अहम बुद्धि इतने जोर से है, इसका नाम ग्रंथि गांठ। मालूम होने पर भी चाहते देखते सूत्र में गांठी लग गई, खोलना चाहते खोल नहीं पाते, खींचते तो घंटी और मजबूत हो जाती है। ये जो अध्यास है उसके पहले शिथिल करने के लिए वेदांत श्रवण। ज्ञान है ब्रह्म विद्या उसकी प्राप्ति के लिए जब श्रवणादि प्रारंभ करते ग्रंथि में थोड़ी शिथिलता आती है। शिथिल होने पर अविद्या की निवृत्ति होती ब्रह्म विद्या से। ब्रह्म विद्या अविद्या क्या की निवृत्ति का है, तो नाश कर देती अविद्या ग्रंथि को पूरा पूरा नाश कर देती है ब्रह्म विद्या, इसलिए उसको उपनिषद कहते हैं। और अविद्या ग्रंथ का नाश हो जाने से परब्रह्म को प्राप्त करा देती है। गम धातु आ गया गति अर्थ का, शिथिल करना, अविद्या ग्रंथि को नाश कर देना और परब्रह्म को प्राप्त कराना, तीनों अर्थ विषय शिथिलीकरण विसरण गति अवसाधन, तीनों अर्थ इसमें उपनिषद है ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या है ब्रह्म ज्ञान, किंतु ग्रंथों को भी उपनिषद कहते हैं। ग्रंथ ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने से ग्रंथों को भी उपनिषद शब्द से कहते हैं, गौण अर्थ है। उपनिषद का मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या, जो अज्ञान का निवर्तक, जिसकी उत्पत्ति वेदांत श्रवण से होती है। जो शुद्ध ब्रह्म नित्य है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं, अज्ञान का आश्रय। अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म विद्या वेदांत प्रमाण से होती है, वही वेदांत उपनिषद है। शब्द ग्रंथ प्रतिपादक है ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक ग्रंथों को भी उपनिषद शब्द से कहते हैं। ये श्रुति प्रस्थान है, इसमें 10 उपनिषद के पर भाष्य रचना की गई, वो 10 उपनिषद का ही प्राधान्यतः अध्यापन अध्ययन श्रवण होता है। 10 में से अभी हम प्रातः काल ईशावास्य केन कठ प्रश्न मुंडक तैतरीय ऐतरीय ये 7 उपनिषद करेंगे। सायंकाल अपराह्न में 5:30 से 7:30 समय है, उसे मांडू के उपनिषद, मांडू के उपनिषद कलेवर छोटा है 12 मंत्र, किंतु उसके पर कारिका भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य ने कारिका लिखी, कारिका के साथ चलाएंगे। मांडू के उपनिषद ये 10 उपनिषद में भी मांडू के उपनिषद श्रेष्ठ कही गई। मांडुकम एकम एवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये, मुक्ति के लिए मांडू के एक ही पर्याप्त है। जिसको हम सायंकाल केवल मांडू का ही चलाएंगे, क्योंकि कुछ लोग सायंकाल आते सुबह नहीं आते, कुछ सुबह आते सायं नहीं आते, तो सुबह क्रम से ये 7 उपनिषद चलाएंगे। और रोज प्रारंभ में 10 शांति मंत्र होगा, पुस्तक सबको मिल जाएगी। और बोलते समय सबको ध्यान देना है, सब एक साथ चलना है। ये समूह संघ में शक्ति है। भजन करते समय स्तोत्र पाठ करते समय ये एक आवश्यक है, साथ चलना। सब यदि अलग अलग बोलेंगे, सबका शब्द अलग होगा, तो ये तो जैसे सामान्य लोग हटा मार्केट में बैठते हैं, ऐसे अलग अलग आ जाएगी। शांति पाठ शांति से करना है, और शांति पाठ करते समय परमात्मा का ध्यान स्मरण करना है। एक साथ मिलने के लिए कोई एक के साथ मिलना पड़ेगा, और पहले थोड़ा धीरे बोलेंगे, याद है हमको करके आगे चल जाएंगे तो कोई पीछे पड़ जाएंगे। पीछे वालों को साथ में लेने के लिए थोड़ा समय बीच में व्यवधान देकर के मिलकर चले, ये अभ्यास करना है। तो मुख्य मैं जैसे पाठ करूंगा हमारे साथ मिलकर के पाठ करने का प्रयास करें। कभी आगे आ गया तो फिर आगे मिल जाए, नहीं कि आगे चल जाना नहीं, कहीं पीछे पड़ गया तो जहां हम पहुंचे वहां से शुरू करें। ये थोड़े अभ्यास करने से होता है, ये भी करना चाहिए। तो कितने सुंदर आपको श्रवण करने में पाठ करने में अच्छा लगेगा। थोड़े एक सप्ताह के अंदर आपको उसे पिछले साल ऐसे किया था तो बहुत लोग, मैं तो सोच जाता एक बार 10 शांति मंत्र करके आगे एक एक करके चलेंगे, किंतु बहुत लोगों ने कहा नहीं रोज 10 शांति मंत्र का पाठ कीजिए। पिछले साल किया था बहुत प्रसन्न हुए थे, अभी पुस्तक सबके साथ है, रोज करना है। प्रारंभ में क्या जाएगा, हमारे कला शास्त्र में ब्रह्म विद्या 2 घंटा चलती प्रातःकाल, आरंभ में 10 शांति मंत्र, अंत में भी 10 शांति मंत्र। अपने ये जो ज्ञान जो क्या चलता है ये तो प्रारंभ हुआ, सायंकाल उसका समाप्ति, अंत में सायंकाल उपनिषद मांडुक के बाद 10 उपनिषद शांति पाठ होगा। वो विधि अंत में क्या जाता है उस समय थोड़ा उसमें कुछ थोड़ा सा एक मंत्र में परिवर्तन उस समय बता देंगे, बाकी रोज पाठ करेंगे। अब यहां प्रथम है इस उपनिषद में ईशावास्य उपनिषद, इसका नाम है प्रथम उपनिषद है। ये शुक्ल यजुर्वेद वेद में कानून शाखा के अंतर्गत है, वाज सनई मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम। वेद में कुछ मंत्र भाग है और कुछ ब्राह्मण है, मंत्र ब्राह्मण दोनों मिल करके वेद है। यह ईशावास्य उपनिषद मंत्र भाग में है और इसकी व्याख्या समान है बृहदारण्यक उपनिषद जो ब्राह्मण भाग में है। दस उपनिषद में प्रारंभ में ईशावास्य है, अंत में बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये जितने संक्षेप से इसमें कहा जाएगा इसका विस्तार होगा बृहदारण्यक उपनिषद में, जिसका प्रवचन अगले वर्ष होगा। अगले साल को दो रखेंगे छांदोग्य और बृहदारण्यक दो, इस साल आठ हो जाएगी। तो ये मंत्र उपनिषद है, मंत्र भाग में ईशावास्य उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद के इसका शांति मंत्र पूर्ण मत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह उपनिषद के प्रारंभ है। वेद मंत्र में पहले ओम उच्चारण करके मंत्र प्रारंभ होता है। अवति इति ओम, अव रक्षण धातु से बनता है, ओम रक्षा करता है, परब्रह्म है ओम। ये मांडुके में कहेंगे और इसमें भी आएगा। ओम प्रणव ब्रह्म का वाचक है और प्रतीक भी। शब्द यद्यपि शुद्ध ब्रह्म निर्गुण होने से निर्विशेष होने से किसी पद का वाच्य नहीं है, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। शब्द की प्रवृत्ति वहीं होती है जहां प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध कोई धर्म हो। ब्रह्म निर्धर्मक होने से किसी भी शब्द से नहीं कहा जाता है। तो भी वेदांत में तो ब्रह्म को यहां ही उपदेश किया जाता है। ब्रह्म शब्द सत शब्द बहुत शब्द है, तो सारे शब्द ब्रह्म को कहेंगे लक्षणा के द्वारा, शक्ति वाच्य नहीं लक्षणा के द्वारा। लक्षणा के द्वारा का अर्थ मुख्य अर्थ गंगा तट का अर्थ प्रवाह, किंतु गंगा तट पर कोई है कहते गंगायाम, गंगा में नहीं गंगा तट पर है। लोक में भी लाक्षणिक शब्द प्रयोग होता है, तो लक्षणा का आगे बताएंगे स्पष्ट, लक्षणा के द्वारा कही जाती है। तो पहले ओम कहते वही ब्रह्म को कहने के लिए ओम वाचक शब्द कह देते हैं लक्षणा से ओम, और उसका प्रतीक जैसे शालग्राम विष्णु का प्रतीक ऐसे ओम ब्रह्म का प्रतीक। प्रतीक उपासना श्रुति सम्मत है, प्रतीक उपासना प्रसिद्ध है, जैसे विष्णु नर्मदेश्वर की उपासना करते हैं इसको कहते प्रतीक उपासना। ओम भी ब्रह्म का प्रतीक है, किंतु ओम लिपि नहीं है। बहु स्थान में ध्यान में ऐसे ओम लिखते लिपि उसको देकर ध्यान करते हैं। ओम है शब्द, शब्द श्रवण इंद्रिय के द्वारा गण होता है। जो पुस्तक हम देखते हैं ये लिपि है, लिपि से हम शब्द का अनुवाद करके पढ़ते हैं, किंतु श्रूयमान होता है शब्द। ऐसे ओम है शब्द ओम, ये जो शब्द है वो ब्रह्म का प्रतीक है न कि लिपि। जो ध्यान करेंगे प्रतीक उपासना ओंकार प्रतीक में, तो ओंकार शब्द के ऊपर ध्यान करना है। वो शब्द में अ उ म जिसका निर्णय स्पष्ट रूप से मांडुके में होगा। जो पूर्णम अदह, अदह शब्द दूर में होता है या परोक्ष वाचक है, वह ब्रह्म अदह का तो वह ब्रह्म पूर्ण है। परोक्ष वाचक होने से जो कारण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म अदह वह पूर्ण है, पूर्णम अदह वो ब्रह्म पूर्ण का अर्थ व्यापक परिचिन्न नहीं, सर्वव्यापक सबके अंदर बाहर है, परिपूर्ण है, परिचिन्न नहीं परिपूर्ण है ब्रह्म। वह ब्रह्म परोक्ष इसलिए कहते हैं, अदह इसलिए कहते हैं, हमारे लिए परोक्ष होने के कारण अपरोक्ष नहीं होने से अदह शब्द से कहते हैं। और यहां जो दिखता है प्रपंच प्रत्यक्ष दिखता है, इसे पूर्णम इदम 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 तो जो प्रत्यक्ष क्रियमाण है ये सब कुछ पूर्ण है। ये कैसे पूर्ण है? सब तो परिच्छन दिखता है, नाम रूपात्मना परिच्छन है, स्वरूपत पूर्ण है। हम नाम रूप अलग अलग देख करके परिच्छन मानते हैं, स्वरूपत ही पूर्ण है। ये पूर्ण और एक वो पूर्ण, ये पूर्ण फिर कहां से आया? अद्वितीय ब्रह्म है। कहते पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण जो परिपूर्ण ब्रह्म परुच्य उससे यह प्रत्यक्ष ब्रह्म उद्भूत होता है, प्रकट होता है, इसे निकलता है। निकलेगा कैसे? स्वरूपत पूर्ण यह निरुपाधिक रूप से पूर्ण है, वह तो निरुपाधिक ब्रह्म पूर्ण है ही, और यह जो सोपाधिक है यह स्वरूपत पूर्ण है, नाम रूप विशिष्ट होकर के सोपाधिक होकर के पूर्ण नहीं है, निरुपाधिक रूप से पूर्ण है। हम नाम रूप को देख करके अपूर्ण मानते हैं, यह नाम रूप को छोड़ देंगे तो यह पूर्ण अभी भी यह पूर्ण है, और उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णस्य पूर्णमादा, यह जो नाम रूप कार्य उपाधिक सोपाधिक ब्रह्म स्वरूपत पूर्ण है, उसके पूर्णत्व को लेकर के पूर्णस्य ये कार्य ब्रह्म पूर्ण है, सोपाधिक पूर्ण है, किस प्रकार? स्वरूपत उपाधि से नहीं, उपाधि से तो परिचन्न, स्वरूपत जो पूर्ण है उसको ले करके, उसको ग्रहण करके, उसको जान करके। उसका लेना जानना ग्रहण करने का क्या अभिप्राय? जो परिच्छेद उपाधि औपाधि को उसको तिरस्कार करना, पूर्ण को लेना का अर्थ अपूर्णत्व का त्याग। पूर्ण तो सिद्ध ही है, उसको लेने का कुछ नहीं। हम क्या करते हैं, ये परिच्छिन्न में सत्यत्व बुद्धि करने से अपूर्णत्व का आरोप करते हैं। जो अपूर्णत्व का आरोप होता है, जिस नाम रूप के कारण भेद आरोप करते, वो भेद भेद का कारण परिच्छेद उपाधि नाम रूप का तिरस्कार करना। नाम रूप को तिरस्कार कर दो, मिथ्यात्व बुद्धि कर दो, तो पुण्य का ग्रहण हो गया, ज्ञान हो गया। ग्रहण का तो ज्ञान, स्वरूप को ग्रहण करने का तो इसे उठाने नहीं, ये मेरे से भिन्न है, इसको मैं ग्रहण करूंगा। और अपने आप को ग्रहण करने के लिए हाथ पैर कौन उठाता है? अपना ज्ञान, माला हमारी है, ज्ञान नहीं है, कहां चली गई? ज्ञान हो गया, हो गया, यहां नहीं लाने पर भी हमारे गले में है, हाथ में पकड़ने की आवश्यकता नहीं। आप अपने स्वरूप को जानने के लिए जो अनात्म वस्तु का तिरस्कार करना है, अनात्म का तिरस्कार कर देने से पूर्णस्य कार्य ब्रह्म है पूर्ण, इसका जो पूर्णम आदाय, पूर्ण का पूर्णत्व अर्थ करना, पूर्णत्व को लेकर के, स्वरूप जो पूर्णत्व है उसको लेकर के अर्थात अपूर्णत्व को तिरस्कार करने से एक पूर्ण ही रहता है, अवशिष्यते पूर्ण ही रहता है। अर्थात पूर्ण एक पहले भी पूर्ण था, अभी भी पूर्ण है, आगे भी नाम रूप छोड़ दो पूर्ण ही रहेगा। अभी पूर्ण से कोई अपूर्ण नहीं हुआ, वो तो अच्युत है, स्वरूपत सर्वात्मना सर्वदा पूर्ण रूप से ही रहता है। ये उपाधि के कारण अपूर्ण तो भ्रम हुआ, वेदांत वाक्य श्रवण करने से ये ब्रह्म की निवृत्ति होती हो, तो नाम रूप छोड़ दिया पूर्ण ही रह गया। केवल इतने करना है, अनात्मा का तिरस्कार, तिरस्कार का तो कोई फेंकने की आवश्यकता नहीं, फेंक नहीं सकते अनात्मा, देव कौन फेंक देगा?